आभ्यंतर कारण। प्रत्येक वस्तु के विकास में कुछ तो बाह्य कारणों और परिस्थितियों का हाथ होता है और कुछ कारण स्वयं उस वस्तु में अंतर्निहित होते हैं। इसलिए बाह्य परिस्थितियों के समान होने पर भी वस्तुओं के विकास की श्रेणी में अंतर पड़ता है। एक ही वातावरण में पलने पर कोई मनुष्य नाटा होता है, कोई लंबा, कोई सबल होता है, कोई निर्बल, कोई अल्पायु होता है, कोई दीर्घायु। इसका कारण स्वयं उस मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति ही है। इसी कारण भाषा के विकास या परिवर्तन में भी बाह्य कारणों का तो प्रभाव रहता ही है, किंतु स्वयं भाषा की प्रकृति भी उस परिवर्तन की भूमिका तैयार करती है। जो कारण भाषा की प्रकृति या स्वरूप से संबद्ध है उन्हें आभ्यंतर कारण कहा जा सकता है। वे ये हैं, पहला प्रयत्न लाघव। भाषा में परिवर्तन करने वाले अभ्यंतर कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का सीधा अर्थ होता है श्रम की अल्पता, अर्थात अधिक श्रम न करना। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि न्यूनतम श्रम से वह अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। मजदूर काम से जी चुराता है, बीच बीच में तंबाकू खाने के बहाने कुछ देर बैठ जाता है। झाड़ू देते समय नौकर कहीं कहीं गंदगी छोड़ देता है। बर्तन साफ करने में रगड़ कर दाग चुराने के बदले हल्का हाथ चलाकर अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेता है। बच्चे को कोई चीज 5 बार पढ़ने को कहिए तो 2 ही बार पढ़कर किताब बंद कर देता है और खेल में लग जाता है। काम पर देर से पहुंचने के बहुत उदाहरण मिलते हैं, लेकिन काम बंद करने में समय निष्ठा का बड़ी तत्परता से पालन किया जाता है। तात्पर्य यह कि मनुष्य सदा यह चाहता है कि कैसे कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ हो। यह भावना भाषा के प्रयोग में भी काम करती है और उसके कारण में काफ़ी हेर फेर होता है। टेलीफोन के बदले फोन, रेलवे ट्रेन के बदले रेल, एरोप्लेन के बदले प्लेन, न्यूज़पेपर या क्वेश्चन पेपर के बदले केवल पेपर, ब्लॉटिंग पेपर के बदले केवल ब्लॉटिंग, पोस्ट कार्ड के बदले कार्ड, रेलवे स्टेशन के बदले स्टेशन आदि कहना श्रम बचाने की मनोवृत्ति का ही परिणाम है। मनुष्य सोचता है कि यदि फोन कहने से काम चल जाता है तो 2 अक्षर और अधिक उच्चारण करने की क्या आवश्यकता। श्रम बचाने के क्या प्रयत्न लाघव की इसी मनोवृत्ति के कारण चतुर्वेदी चौबे हो गए और उपाध्याय ओझा या झा। दुबे द्विवेदी की भी हालत कोई अच्छी नहीं रही। नीलिमा का नीली, दादा का दा प्रयत्न लाघव के ही फल हैं। इसी तरह रेवती रेवती रमण, नलिनी नलिनी रंजन, मोहिनी मोहिनी मोहन, शशांक शशांक शेखर आदि नामांशों का प्रयोग प्रयत्न लाघव से ही प्रेरित रहता है। आदित्यवार इसी प्रकृति के कारण सिमट कर इतवार बन गया। अंग्रेजी के NCC, UNO, USSR, USA, USRU के आदि संक्षिप्त रूप प्रयत्न लाघव के ही प्रयत्न हैं। प्रयत्न लाघव आलस्य की सम्मानित संज्ञा है। आलस्य न तो कहने में अच्छा लगता है न सुनने में। उसके बदले प्रयत्न लाघव से गंभीरता टपकती है। प्रयत्न लाघव को और भी स्पष्ट करना चाहें तो औच्चारण सौकर्य कह सकते हैं। हाथ पर हिलाने में ही नहीं, जीभ हिलाने में भी मन संकोच करता है। एक एक शब्द के जो वाक्य होते हैं वो उच्चारण सौकर्य से प्रेरित होते हैं। जैसे तुम घर कब आओगे? कल। और लौटोगे कब? परसों। आज शाम को मेरे आने का समय निकाल सकोगे? हाँ। इन वाक्यों में उत्तर वाला जो अंश है उस पर ध्यान दिया जाए तो प्रयत्न लाघव की बात स्पष्ट हो जाती है। कल, परसों या हाँ का अपने आप में कोई निश्चित अर्थ नहीं और तीनों प्रश्न वाक्यों का उत्तर इस प्रकार होना चाहिए था, मैं कल घर आऊँगा, मैं परसों घर से लौटूंगा, हाँ आज शाम को तुम्हारे आने का समय मैं निकाल सकूँगा। किंतु पूरे वाक्य के प्रयोग के बदले एक एक शब्द का प्रयोग कर हम अभिप्राय व्यक्त कर देते हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक समझौता है। पूरा वाक्य न बोलकर एक मनुष्य से वाक्यार्थ का काम निकाल लेना पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। अभी एक शब्द बोलकर अपने वाक्य का काम चला लिया, बाद में मैं भी एक शब्द बोलता हूँ और आप उससे वाक्यार्थ निकाल लेते हैं। इससे दोनों की मेहनत बचती है और अर्थबोध में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रयत्न लाघव में केवल श्रम की ही नहीं समय की भी बचत होती है। उपर्युक्त प्रणाली से भाषा का प्रयोग करने पर श्रम तो बचता ही है, समय भी कम नहीं बचता। 5 शब्दों के प्रयोग के बदले यदि 1 शब्द के प्रयोग से काम चल जाए तो 80% समय और श्रम की बचत हो गई, जिसका उपयोग दूसरे कार्यों में किया जा सकता है। प्रयत्न लाघव के अंतर्गत भाषा संबंधी परिवर्तन की कई प्रक्रियाएं आती हैं। वे हैं आगम, लोप, विपर्यय, समीकरण, विस्मीकरण, सर्वभक्ति आदि। पहला, आगम। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द में ऐसे संयुक्त अक्षर आ जाते हैं जिनका उच्चारण आसानी से नहीं हो पाता, अतः किसी स्वर की सहायता लेकर उसका उच्चारण करना अधिक सुविधाजनक मालूम होता है। शब्द में ध्वनि शब्द का आ जाना आगम कहलाता है। आगम स्वर और व्यंजन दोनों का हो सकता है। स्थान भेद से आगम के तीन भेद हैं, आदि, मध्य और अंत। ऊपर चढ़ने में सीढ़ियों का, पैर से चढ़ने में बैसाखी का, कमजोर आदमी के खड़े होने में किसी के कंधे या हाथ के सहारे का जो उपयोग है वही शब्द के आरंभ में प्रयुक्त स्वर का होता है। उदाहरणार्थ, स्कूल, स्खलित, स्तुति, स्त्री, स्थाई, स्थिर, स्टूल, स्पष्ट आदि शब्दों का उच्चारण बहुत लोग स्कूल, अस्खलित, अस्तुति, स्त्री, अस्थाई, स्टूल और स्पष्ट करते हैं। इन शब्दों में स्वरागम उच्चारण में ही हुआ करता है, लिखने में नहीं। किंतु गोस्वामी तुलसीदास ने तो अस्तुति लिखकर स्वरागम के लिखित रूप पर भी मुहर लगा दी है। सुनि विरंचि मन हरखतन पुलकी नयन बहनीर, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। रामचरितमानस बालकांड 185। या कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। रामचरितमानस बालकांड 192। इसलिए कुछ लोगों को जब अस्थाई कहना होता है तो एक और अ लगाते हैं और अस्थाई कहते हैं। यह स्वरागम प्रायः वैसे शब्दों के आरंभ में ही होता है जिनमें स के साथ किसी दूसरे वर्ण का संयोग रहता है, जैसे स धन क बराबर स्क, स धन ख बराबर स्ख, स धन त बराबर स्त, स धन त्र बराबर स्त्र, स धन ट बराबर स्ट, स धन थ बराबर स्थ आदि। यहाँ स्वर का आगम शब्द के आदि से हुआ है, इसलिए इसको आदि स्वर आगम कहेंगे। कहीं कहीं स्वर शब्द के माध्यम में भी आ जाता है, उसे मध्य स्वरागम कहते हैं, जैसे मर्म से मरम, धर्म से धर्म, कर्म से कर्म, पूर्व से पूरब। आगम व्यंजन का भी हो सकता है, जैसे शाप से शराप। यहाँ र का आगम हो गया, इसी कारण पण से प्रण। दूसरा, लोप। जो जब दो संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होती है तो उच्चारण सौकर्य के लिए उनमें से एक का लोप कर दिया जाता है, अर्थात उच्चारण नहीं होता। जैसे ज्येष्ठ का जेठ, श्रेष्ठ का सेठ, स्थल का थल, दुग्ध का दूध, शमशान का मसान, स्टेशन का टेशन। पैर की तरह जीभ भी समतल पर चलना चाहती है। जिस तरह पैरों को जोते हुए या ढाले वाले खेतों के बीच चलने में कठिनाई होती है और बराबर चिकनी सड़क पर आराम मिलता है, उसी तरह जीभ को भी संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में कठिनाई होती है। शब्दों के ऊबड़ खाबड़ यानी संयुक्त रूप को बराबर करने के लिए जीभ कहीं कोई डाल देती है, उसे आगम कहते हैं। कहीं से कोई ध्वनि निकाल लेती है, उसे लोप कहते हैं। रास्ते में यदि कहीं जमीन ऊंची रहती है तो उसे छांट कर बराबर कर देते हैं, कहीं गड्ढा रहता है तो उस पर मिट्टी डाल देते हैं। ये नियम भाषा पर भी लागू होता है। कहीं कोई ध्वनि डाल लेने से, कहीं कोई ध्वनि निकाल लेने से शब्द भी जमीन की तरह बराबर हो जाते हैं और उनका खुरदुरापन मिट जाता है। जीभ को उन पर चलने में आसानी होने लगती है। आगम के समान लोप भी शब्द के आदि, मध्य या अंत में कहीं भी हो सकता है। तीसरा, विकार। उच्चारण की सुविधा के लिए एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि में परिवर्तन हो जाना विकार कहलाता है। जैसे कृष्ण का कान कान्ना, यहाँ श का ह, ड का न हो गया है। मेघ का मेह, शाग का साग, गभीर का गहिर, स्तन का थन, हस्त का हाथ, मध्यम का मध्यम। चौथा, विपर्यय। विपर्यय का अर्थ है उलटना। कभी कभी शब्दों के वर्ण क्रम उच्चारण में उलट जाता है, इसे ही विपर्यय कहते हैं। विपर्यय मुख्यतः दो कारणों से होता है, एक तो बोलने की तेजी से और दूसरे अपूर्ण या भ्रांत श्रवण से। बोलते समय मन और वागेंद्रियां एक साथ काम करती हैं, मन में विचार उत्पन्न होता है और वह वागेंद्रियों की सहायता से अभिव्यक्त होता है। वागेंद्रियों की अपेक्षा मन की गति स्वभावतः तीव्र होती है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक वाघ इंद्रियां पीछे की ध्वनि पर ही रहती है तब तक मन आगे की ध्वनि पर पहुंच जाता है। अतः बाद की ध्वनि पहले उच्चरित हो जाती है और पहली ध्वनि बाद में। विपर्यय का एक कारण तो यह है, दूसरा यह कि पहली बार जब वह शब्द सुना गया तो उसके सुनने में या तो धोखा हो गया या श्रवण अधूरा रह गया और यह शब्द उसी रूप में मन में बैठ गया, अतः बाद में भी उसके उच्चारण में विपर्यय होता रहता है। विपर्यय के निम्नलिखित उदाहरण पर्याप्त प्रचलित हैं, अमरूद से अमधूर या अरमूद, आदमी से आमदई, वस्तु से बतुस, चीज यानी बतुस, पहुँचना से चहुपना, डूबना से बुड़ना, हृदय से दह, पिशाच से पिचास आदि। पांचवा समीकरण, जब दो भिन्न ध्वनियाँ पास रहने से सम हो जाती हैं तो उसे समीकरण या समीभवन कहते हैं। समीकरण के दो भेद होते हैं, क पुरोगामी समीकरण और ख पश्चगामी समीकरण। जब परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती ध्वनि के समान हो जाती है तो उसे पुरोगामी समीकरण कहते हैं। जब पूर्ववर्ती ध्वनि परवर्ती ध्वनि के समान हो जाती है तो उसे पश्चगामी समीकरण कहते हैं। पुरोगामी समीकरण वार्ता बात, दुर्वा दूब, ऊर्ष्णा ऊन, वल्कल बाकल, कर्म काम, जगतनाथ जगन्नाथ, दुग्ध दूध, मुद्गम का मूंग हो जाता है। पश्चगामी समीकरण अग्नि से आग, पुत्र से पूत, कल्य से कल, पथ्य से पथ, पत्र से पात या पत्ता, रात्रि से रात, निद्रा से नींद हो जाता है। शीघ्रता से उच्चारण करने पर समीकरण का प्रभाव वाग्धारा में आए शब्दों पर भी पड़ता है, जैसे रात दिन उच्चारण में रात दिन बन जाता है या भात दाल का भात दाल। संस्कृत या हिंदी में संधि के जो विस्तृत नियम है वे मुख्यतः समीकरण के ही रूप हैं। छठा विषमीकरण, जब दो निकटस्थ यानी अव्यवहित ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई का अनुभव होता है तो उनमें भेद कर दिया जाता है। भेद या वैषम्य ला देने के कारण ही इस परिवर्तन को विषमीकरण कहते हैं। ऐसा प्राय तब होता है जब एक ही प्रकार की दो ध्वनियाँ पास पास रहती हैं, जैसे कंकड़ से कंगन, लाला से लार, प्रकट से प्रगड, मुकुट से मऊर, काक से काग। सातवां स्वर भक्ति, संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में जीव को अधिक असुविधा होती है और वहां धक्का देकर जीव को आगे बढ़ाना पड़ता है। उस असुविधा को दूर करने के लिए संयुक्त व्यंजनों के बीच जब कोई स्वर रख दिया जाता है तो उसे स्वर भक्ति यानी स्वर से बांट देना अर्थात अलग कर देना कहते हैं। स्वर के आ जाने से व्यंजनों का संयोग मिट जाता है और उच्चारण में सौकर्य आ जाता है। स्वर भक्ति भी एक प्रकार का स्वरागम ही है जिसका स्थान शब्द के बीच में हुआ करता है, इसीलिए इसे मध्य स्वरागम भी कह सकते हैं। वस्तुतः स्वर भक्ति एक नया नाम गढ़ने की अपेक्षा मध्य स्वरागम शब्द का प्रयोग अधिक सुविधाजनक है। स्वरागम को जान लेने पर स्थान भेद से आदि स्वरागम मध्यम स्वरागम आदि को समझ लेना बिल्कुल आसान हो जाता है, जैसे व्रत से व्रत, मूर्ति से मूर्त, राजेंद्र से राजिंदर, स्नान से स्नान, प्राण से प्राण, स्मरण से सुमिरन, भ्रम से भ्रम, कर्म से कर्म, नर्म से नरम, दर्द से दर्द। हे री मैं तो प्रेम दीवाणी, मेरु दर्द न जाने कोई मीरा। ध्वनि संबंधी इन समस्त परिवर्तनों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सब का एक मूल एक ही है और वह है उच्चारण सौकर्ष या प्रयत्न लाघव। जैसा पहले कहा गया है, ध्वनि या शब्द संबंधी अधिकतर परिवर्तन प्रयत्न लाघव के कारण ही होते हैं। दूसरा बल, बोलते समय किसी बात पर अधिक जोर देने के लिए या उसे स्पष्ट करने के लिए शब्द या वाक्य के किसी अवयव का उच्चारण अधिक बल देकर किया जाता है। बोलने के क्रम में मेज पर हाथ पटकना या पंजों पर खड़ा हो जाना उसी बल को दृढ़ करने का साधन है। इन आंगिक चेष्टाओं से रहित भी बल का प्रयोग होता है, जैसे था ही के बदले थे था, है ही के बदले हैं हैं, करेंगे के बदले करवे करेंगे आदि प्रयोग चलते हैं। ये सभी प्रयोग बल देने की इच्छा के प्रमाण हैं। पक्को शब्द से दो शब्द निष्पन्न हो गए, पका और पक्का। पका का प्रयोग सामान्यतः पक्वता का भाव सूचित करने के लिए होता है, जैसे पका आम, पकी रोटी, किंतु जहाँ पक्वता में दृढ़ता या कठोरता दिखाई पड़ती है वहाँ पक्का का प्रयोग होता है, जैसे पक्का बदमाश, पक्का चोर, पक्की सड़क आदि। यहाँ पका बदमाश या पकी सड़क नहीं कहते, क्योंकि जो दृढ़ता या कठोरता बताना अभिप्रेत है वह पका से सिद्ध होती है। द्विबल के कारण भी हिंदी में दो और गुजराती में बे हो गया। पहले ध्वनि पर बल पड़ने से दो और दूसरी ध्वनि पर बल पड़ने से बे। गुजराती में दो के बदले बे कहते हैं। ग्रीक बी, पी आई से निष्पन्न अंग्रेजी के बाईपेड, बाईसाइकिल, बाईगैमी आदि शब्दों में द्वि का अपभ्रंश वी भी बाई के रूप में उच्चरित होता है। अंग्रेजी उच्चारण में वह बाई हो जाता है, द्विपाद, बाईपेड। बच्चन की निम्नलिखित कविता में नदी का नदी के रूप में प्रयोग बल से ही प्रेरित है। बैठा नहीं जाता बेकार, जाओगे ऊप नदी में डूब, दे न दो कहीं अपनी जान, बुद्ध और नाचकर, पृष्ठ संख्या 105। रेडियो पाकिस्तान से प्रसारित होने वाले उर्दू समाचारों को प्रभावशील बनाने के लिए अनावश्यक, गलत और भद्दे ढंग से बल का प्रयोग किया जाता है। उसके उच्चारण बिल्कुल विकृत बन जाता है। उर्दू का वैसा उच्चारण रेडियो पाकिस्तान के समाचार वाचकों को छोड़कर और कोई नहीं करता। पाकिस्तान की बल प्रदर्शन की भावना शब्दों के उच्चारण तक में काम करती है। तीसरा, भाव अतिरेक। प्रेम, क्रोध, शोक आदि भावों में अतिरेक यानी आधिक्य से भी शब्दों का रूप बदल जाता है। उदाहरण, बाबू का बबुआ, बच्चा का बचवा, राजा का राजू या रजवा, बेटी का बिटिया, बहन का बहिनिया आदि रूपांतर भावातिरेक के कारण हो जाते हैं। लोकगीत में बहुत बार लहुरा देवरवा सुनने को मिलता है। यह लघु देवर का स्नेहपूर्ण रूप है। लघु, लहुरा, देवर से देवरवा। प्रेम या खींच के कारण राम का रामू या रमुआ बन जाता है। चौथा, अपूर्ण अनुकरण। किन्हीं दो व्यक्तियों का शारीरिक संगठन या अंगों का निर्माण एक जैसा नहीं होता। यही कारण है कि दो व्यक्तियों की आकृति नहीं मिलती। शारीरिक या आंगिक संगठन की अभिन्नता जैसी बाहर होती है वैसी ही भीतर भी। अंतर यही है कि बाहरी भिन्नता दिखाई पड़ती है और भीतरी नहीं। दो व्यक्तियों के हृदय, फेफड़े या स्वरयंत्रियों में भेद तो हो रहता ही है, किंतु वह दिखाई नहीं देता। किसी की आवाज़ बड़ी सुरीली होती है और किसी की उतनी ही कर्कश। किसी की आवाज़ सुनने से जी नहीं भरता और किसी की आवाज़ सुनने को जी नहीं चाहता। आवाज़ के इस अंतर का प्रमुख कारण है वागिंद्रियों की भिन्नता। इस भिन्नता के कारण शब्दों को उच्चारण और अनुकरण में भिन्नता आ जाती है। भाषा सुनकर सीखी जाती है, यह हम देख चुके हैं। आसपास के लोग जैसा उच्चारण करते हैं बच्चा वैसा ही उच्चारण करने की चेष्टा करता है। जिसका वह अनुकरण करता है उनका ही उच्चारण परस्पर भिन्न होता है और बच्चे का उच्चारण भी उसके आंगिक संगठन से नियंत्रित होता है। इसलिए दो व्यक्तियों द्वारा एक ही ध्वनि का उच्चारण बहुत कुछ कुछ समान होने पर भी बिल्कुल एक नहीं हो पाता। यदि किसी के वाग इंद्रियों में कोई त्रुटि हो तो उसका उच्चारण भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है और वह आजीवन बना रहता है। आंगिक संगठन के साथ मानसिक संगठन या स्तर का भी अनुकरण में प्रभाव पड़ता है। जिस तरह सबकी आकृति एक नहीं होती उसी तरह प्रकृति भी एक नहीं होती। कारण के मस्तिष्क के निर्माण में और उसके कारण बुद्धि में अंतर पड़ता है। जैसे कोई बहुत सुंदर होता है कोई कुरूप, कोई वैसा ही कोई बहुत तीव्र बुद्धि होता है कोई मंद बुद्धि। अब तीव्र बुद्धि के शब्द को जिस रूप में ग्रहण करेगा उसी रूप में मंद बुद्धि नहीं कर सकता। ग्रहण अर्थात अनुकरण में भेद हो जाने से उच्चारण में भी भेद हो जाया करता है। अपूर्ण उच्चारण में अज्ञान का भी हाथ होता है। शब्द का शुद्ध रूप क्या है, क्या होना चाहिए, यह न जानने के कारण बहुत बार उच्चारण में भूल हो जाती है। अज्ञान और अशिक्षा एक नहीं है। बहुत सारे अशिक्षित व्यक्तियों का भी उच्चारण बड़ा परिमार्जित होता है और बहुत सारे शिक्षित व्यक्तियों का भी उच्चारण दूषित होता है। विश्वविद्यालय की उपाधियों से अलंकृत व्यक्ति भी कभी कभी ताल अभिदंत्य व ब ळ न र ळ य ज आदि का भी नहीं कर पाते। शिक्षितों के उच्चारण संबंधी भूलें प्रबुद्ध श्रोताओं का पर्याप्त मनोरंजन करती है। इसलिए अशिक्षा को उच्चारण की अपूर्णता का कारण मानना तर्कसंगत नहीं है। वस्तुतः उसके लिए उत्तरदायी अज्ञान हुआ करता है। शिक्षित न होने पर भी रेलवे गार्ड और मिलिट्री गार्ड का अंतर देहात का व्यक्ति अच्छी तरह कर लेता है। रेलवे गार्ड को वह गार्ड यानी गार्ड साहब और मिलिट्री गार्ड को वह गारद कहता है। दोनों को गारद या गार्ड कहने में अर्थ का सांकर आ जाने का भय था, जिसे वह उच्चारण भेंट से मिटा देता है। पोस्ट कार्ड को पोस्ट कार्ड न कहकर वह पोस्ट कार्ड कहता है। इसका कारण यह है कि वह शब्द के शुद्ध रूप से परिचित नहीं है, तो आंगिक एवं मानसिक संगठन तथा अज्ञान के द्वारा ध्वनियों का सम्यक अनुकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण भाषा में परिवर्तन हुआ करता है। जैसा अभी कहा गया है, अपूर्ण उच्चारण के लिए वक्ता और श्रोता दोनों उत्तरदायी हैं। यह अपूर्णता जानबूझकर नहीं होती, बल्कि शारीरिक मानसिक सीमाओं से नियंत्रित होती है। अनुकरण की अपूर्णता को दूर करने का एक ही उपाय है, सावधानी से ध्वनियों को सुनना और अभ्यास द्वारा उन्हें निर्दोष बनाना। जैसे संगीत में एक ही स्वर का बार बार अभ्यास करना होता है, वैसे ही ध्वनियों के उच्चारण पर भी अभ्यास से अधिकार किया जा सकता है। अपूर्ण अनुकरण क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ता जाता है। पिता का अपूर्ण अनुकरण पुत्र ने किया, उसी प्रकार उसका अपूर्ण अनुकरण उसके पुत्र ने किया। इस तरह पीढ़ियों के बाद अनुकरण की अपूर्णता काफ़ी व्यापक हो जाती है, जिसका अनिवार्य प्रभाव भाषा पर पड़ता है। स्वभावतः कई पीढ़ियों के बाद भाषा में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। पांचवा, जातीय मनोवृत्ति। कुछ विद्वानों ने भाषा के परिवर्तन में जातीय मनोवृत्ति को भी स्थान दिया है। उनका कहना है कि प्रत्येक जाति की विशिष्ट मनोवृत्ति होती है, जो एक दूसरी से भिन्न होती है। फिर कोई जात किसी से श्रेष्ठ होती है और कोई किसी से हीन। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी जातियों की बौद्धिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां एक जैसी होती। काव्य दर्शन, संगीत कला आदि का समान विकास सभी जातियों में नहीं हुआ है। इसका कारण जातियों की मनोवृत्ति या मानसिक अवस्था का भेद है। यह मनोवृत्ति भाषा में भी अभिव्यक्त होती है। जो जाति जैसी रहती है उसकी भाषा वैसी ही बन जाती है। जिन जातियों में कोमलता स्निग्धता है उनकी भाषा मधुर है, और जिन जातियों में दृढ़ता या सबलता है उसकी भाषा कठोर है। उदाहरणार्थ जर्मन जाति की कठोरता और सबलता जर्मन भाषा के पारुष्य में प्रतिबिंबित है। इसी तरह फ्रांसीसियों की कोमलता और कलाप्रियता के कारण फ्रांसीसी भाषा मधुर बन गई है। जातीय मनोवृत्ति या मानसिक अवस्था के कारण भाषा में परिवर्तन होता है, इसे बहुत से विद्वान नहीं मानते। इसका तर्क है कि नैसर्गिक रूप से मनुष्य की मनोवृत्ति में कोई भेद नहीं होता, और न कोई जाति मानसिक रूप से श्रेष्ठ होती है नहीं। बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसी जाति की बौद्धिक प्रगति हो जाती है और किसी की नहीं होती। अवसर मिलने पर कोई भी जात उत्कर्ष को प्राप्त कर सकती है। दूसरी बात यह है कि मार्दव या पारुष्य भी वास्तुनिष्ठ होकर आत्मनिष्ठ हुआ करता है। सच तो यह है कि अपनी भाषा किसी को कठोर नहीं लगती। कोमलता व कठोरता का आरोप दूसरे किया करते हैं, अन्यथा किसी भी भाषा के बोलने वालों की दृष्टि में उनकी ही भाषा सर्वोत्कृष्ट होती है। जातीय मनोवृत्ति को भाषा के परिवर्तन का कारण मानने वालों और न मानने वालों में एक बहुत कुछ एकांगित दिखती है। शारीरिक निर्माण या रंगों में जातीय प्रभाव तो पाया जा ही जाता है। अफ्रीका की कई जातियों का रंग काला, बाल घुंघराले, होठ चिपटे और अंग पुष्ट होते हैं। इसके प्रतिकूल चीनियों का रंग पीला, केश सीधे, होठ पतले और अंग दुबले होते हैं। दोनों के निर्माण में मौलिक अंतर है। जो अंतर उनके शारीरिक निर्माण में दिखाई देता है वो उनके मानसिक निर्माण में बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कैसे मान लिया जाए? संस्कार का असर जीव विज्ञान भी स्वीकार करता है। इसलिए जातीय मनोवृत्ति का भाषा के विकास या परिवर्तन में हाथ है ही नहीं, ऐसा मानना एक पक्षीय होगा। मैंने जो इस पर थोड़ा बहुत विचार किया है उससे बड़े रोचक तथ्य सामने आए हैं। अंग्रेजी में वर्तमान काल के दो भेद हैं, सामान्य वर्तमान और तत्कालिक वर्तमान। इसके प्रतिकूल फ्रांसीसी में एक ही वर्तमान काल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलना अतर्कसंगत नहीं होगा कि अंग्रेजी की काल धारणा उनकी समय निष्ठा से प्रेरित है। फ्रांस में किसी काम में देर करना सही है, किंतु इंग्लैंड में असह्य। समय निष्ठा ने समय को व्यक्त करने वाले क्रिया रूपों में भी अंतर कर दिया है। आई गो और आई एम गोइंग में स्पष्ट ही अंतर है। संस्कृत में गमनार्थक धातुओं का बाहुल्य है, जो संभवतः इस बात का प्रमाण है कि आर्य स्थिर रहने के बदले चलते रहना पसंद करते थे। रूसी में भूत और भविष्य काल के दो ही भेद हैं, पूर्ण और अपूर्ण। काम आज हुआ या कल, अथवा कल होगा या परसों, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उनका मतलब इससे है कि काम पूरा हुआ या नहीं, हो चाहे वह कभी। आज रूस की आशातीत भौगोलिक प्रगति के मूल में क्या यह पूर्णता अपूर्णता की भावना नहीं देखी जा सकती? काम की पूर्णता पर हमेशा ध्यान रखने वाला पूर्णता की ओर अग्रसर तो होता ही, इसमें क्या आश्चर्य। इसलिए जिस सरलता से जाति मनोवृत्ति के प्रभाव वाले सिद्धांत को अपेक्षित कर दिया जाता है, वह अमान्य ठहरती है। छठा, सादृश्य। किसी प्रयोग को देखकर उसके मूल में बिना गए उसी के आधार पर दूसरा प्रयोग कर बैठना सादृश्य के अंतर्गत आता है। कुछ भाषा विज्ञानी इसे मिथ्या सादृश्य कहते हैं। कारण है वह सादृश्य वास्तविक न होकर अवास्तविक होता है, एक प्रकार से प्रयोगता के अज्ञान का परिणाम। चूंकि सादृश्य के आधार पर किए गए परिवर्तन अज्ञान मूलक होते हैं, इसलिए इसे आभ्यंतर कारणों में ही गिनना उचित है। कुछ लोग सृष्टा के बदले सृष्टा लिखते हैं, वे सृष्टि के सादृश्य पर सृष्टा गढ़ लेते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि सृष्टि और दृष्टि में दो प्रत्यय हैं, इसलिए उनके रूप में भी भेद हो जाता है। अभी उपसर्ग से परिचित कुछ लेखक अभिज्ञ के अ को असुर के अ जैसा निषेधार्थक मानकर जानने वालों के लिए भिज्ञ और न जानने वालों के लिए अभिज्ञ का प्रयोग करते हैं। असुर के नग्न के कारण अभी उपसर्ग का अ भी नग्नवाची बन गया। वैसे असुर का अ भी अज्ञान मूलक परिवर्तन के कारण ही नग्नवाचक बना है, अन्यथा वेदों में तो असुर अर्थात प्राणों की रक्षा करने वाले को असुर कहा गया है और उसका अर्थ होता है देव। पर अब संस्कृत और हिंदी दोनों में ही असुर का अ नग्नवाचक के रूप में स्वीकृत हो चुका है। अंग्रेजी में शैल, विल में एल रहने से शुड, वुड में एल का रहना तो समाधेय है, किंतु कैन में से कुड बन गया, इसका कोई युक्त संगत आधार नहीं है। यदि है तो यही कि शुड और वुड के सादृश पर कुड में भी एल आ गया। वस्तुतः शब्दों की व्युत्पत्ति और वास्तविक रूप मानने से इस तरह की भ्रांति हो जाती है। ऐसा सादृश्य एक प्रकार की भ्रांति ही है, इसलिए कुछ लोगों ने इसे मिथ्या सादृश्य कहना पसंद किया है। मिथ्या सादृश्य अर्थात जो मनुष्य जो सादृश्य मिथ्या हो उसे वस्तुतः हो ही नहीं फिर भी मान लिया जाए, भाषा में परिवर्तन के ये ही मुख्य प्रयोजक कारण है। भाषण की द्रुतता आदि की भाषा परिवर्तन के कारण माने गए हैं, किंतु वे अकिंचितकर हैं, इसलिए उनकी चर्चा अनापेक्षित है।